सब हॉल में मौजूद थे। अयांशु ऊपर अपने रूम में था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। अनिकेत जी आने वाले थे अब किसी भी वक्त और सब उनका इंतजार कर रहे थे। आरवी तो बीच हॉल इधर से उधर चक्कर काट रही थी और साथ साथ बड़बड़ा भी रही थी। ये दिल्ली आज कुछ ज्यादा दूर नहीं हो गई क्या? बप्पा मंदिर की ओर देख, उड़कर आने में तो इतना वक्त ना लगता, फिर क्यों वक्त लग रहा है उन्हें इतना आने में? जल्दी आए जल्दी आए, इस चक्कर में 4 घंटे तो लग गए, अब और कितनी देर लगेगी? इधर मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, उधर ऊपर मिस्टर मेहरा, उनका तो अलग ही चल रहा है, मानो उनके डैड नहीं उनकी सास आ रही हो, वो भी खूंखार सास जिसके आने की खबर से कलेजा बाहर आने को हो जाए। प्लीज जल्दी आ जाओ कपिल अंकल, आई मीन डैड, अपनी घड़ी की ओर देखते। जब किसी का बेसब्री से इंतजार करते हैं हम, पता नहीं ये घड़ी क्यों स्लो हो जाती है। तभी विनीत अभी से बोला, अभिनव चलो बाहर चलते हैं। अभी? हाँ विनीत जी, जैसे ही अंकल आएंगे जल्दी से उन्हें अंदर ले आएंगे हम। और दोनों भागते हुए बाहर चले गए। जैसे ही दोनों बाहर पहुंचे तो एक गाड़ी मेहरा सदन के बाहर आकर रुकी। दोनों गाड़ी देखकर एक दूसरे की ओर देखे, मुस्कुराए और मेन गेट की तरफ भागे। अनिकेत जी गाड़ी से बाहर निकले, गार्ड उनसे कुछ भी कहता, विनीत और अभी वहां पहुंच गए। अंकल आप आ गए, कहते अभी उनके पैर छूकर गले लगा और विनीत भी नमस्ते अंकल कहते हुए उनके पैर छूता है। अनिकेत जी के चेहरे पर परेशानी हैरानी के भाव इस कदर छाए हुए थे जैसे बारिश से पहले घनघोर काले बादल छा जाते हैं आसमान में, क्योंकि आज जो हुआ वो उनकी उम्मीद से परे था। अनिकेत जी ने मेहरा सदन की तरफ देखा, जहां वो कभी नहीं आने वाले थे, आज फिर उनके कदम वहां लौट आए थे। उन्होंने एक नज़र विनीत को देखा और फिर वो अभी से बोले, अभी यहाँ क्या हुआ? वो आगे बोलते अभी बोल पड़ा, अंकल क्या हुआ क्या नहीं, चलिए अंदर आपको सब पता चल जाएगा। विनीत भी बोल पड़ा, हाँ आइए अंकल, सब आपका वेट कर रहे हैं। और दोनों अनिकेत जी को लेकर अंदर की ओर बढ़ गए। जाते जाते विनीत ने गार्ड से बोला, गाड़ी अंदर लगाओ और हाँ ध्यान से लगाना, अयांश मेहरा के डैड की गाड़ी है। ये सुनकर जहाँ गार्ड हैरान हो गया, वहीं अनिकेत जी की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गईं। वो कुछ कहने को हुए तभी अभी विनीत से बोला, ऐसा लग रहा है ना विनीत जी जैसे अंकल वनवास से लौटे हों। विनीत हामी भरते, हाँ अभिनव सालों बाद अपने घर लौटे हैं, ऐसा ही समझ लो, वनवास पूरा करके आए हैं। दोनों की ये बातें सुनकर अनिकेत जी थोड़े घबरा गए और उनके कदम भी रुक गए। वो मन ही मन खुद से बोले, क्या हो रहा है ये सब, खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है, कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा मैं। कि तभी विनीत और अभी दोनों एक साथ बोले, क्या हुआ रुक क्यों गए? वो दोनों की ओर देखते अनिकेत जी अपने हाथों को मसलते बोल रहे थे कि दोनों उनकी हालत समझ गए। विनीत उनके कंधे पर हाथ रखते, जानते हैं आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे, पर आज आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा अंकल। अभी, हाँ अंकल, और अभी जो आपको समझ नहीं आ रहा है सब समझ भी आ जाएगा, और जिस चीज पर यकीन ना हो रहा उस पर यकीन भी आ जाएगा। और चलिए, कहते दोनों उन्हें अंदर खींच ले गए। जैसे ही अंदर पहुंचे विनीत ने सबको आवाज दी, अंकल आ गए। अभी भी बोला, आरवी दादू देखिए जिनका इंतजार था हमें वो आ गए। और सबकी नजरें अनिकेत जी पर चली गईं। सबको अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर अनिकेत जी के कदम जहां थे वहीं रुक गए। आरवी अपने कदम उनकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ाने को हुई कि उसने अपने कदम ऊपर की ओर दौड़ा दिए। मैं पहले मिस्टर मेहरा को जाकर बताती हूँ, और वो भागते हुए ऊपर चली गई। अनिकेत जी दिनकर जी की तरफ देखते हैं जिनके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट और आंखें भी हल्की नमसी हो उठी थीं। बाकी सब भी मुस्कुरा रहे थे। अनिकेत जी की अपने बाऊजी को देखकर आंखें छलक उठीं। वो हकीकत है या वहम, इसमें उलझे खुद को समझा रहे थे वो खुद को। तभी उन्होंने सोनाक्षी जी को वहां देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। वो हैरान होते मन ही मन खुद से बोले, सोनाक्षी? तभी अनिकेत कहते सोनाक्षी जी उनके पास चली आईं। अनिकेत तुम आ गए, कितना वक्त लगा दिया, हम लोग कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा। अनिकेत पता है सब ठीक हो गया, बाऊजी और अयांश ने हमें माफ कर दिया। अनिकेत आज सच सबके सामने आ गया, सब बता दिया मैंने जो सच में सच था, हम पर यकीन भी कर लिया, हमें अब गलत नहीं समझेंगे ना बाऊजी, ना अयांश, ना ही कोई और, कहते सोनाक्षी जी उन्हें सब बता देती हैं। अनिकेत तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, बाऊजी ने मान लिया, वो देखो बाऊजी तुमसे मिलने के लिए कैसे बेताब खड़े हैं, तुम्हें घर बुला लिया बाऊजी ने हमेशा हमेशा के लिए, अब तुम बाऊजी अयांश के साथ रहोगे ना कि इनसे दूर अपने घर से अलग, सब ठीक हो गया अनिकेत, सब ठीक हो गया। ये सुनकर एक पल अनिकेत जी को अपने कानों पर विश्वास ही ना हुआ, वो सबकी ओर देखते सोनाक्षी जी से बोले, सच कह रही हो? इस पर वो कुछ कहती दिनकर जी बोल पड़े, बिल्कुल सच कह रही है। ये सुनकर अनिकेत जी की आंखें और गला भर आया, वो बहुत खुश हुए, उनकी जुबान ने बाऊजी पुकारना चाहा, पर खुशी के मारे जुबान से लफ्ज ही नहीं निकल पाए, बस होंठ पर बस हिलकर रह गए। तभी दिनकर जी ने उनके लिए अपनी बाहें खोल दी, अनिकेत हमें माफ कर दो, अपने बाऊजी को तुम माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, कसूरवार समझा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर पछतावे भरे लहजे में भावुक होते, अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं बेटा,
अपने बाऊजी के पास आओ, हमसे दूर मत रहो, तड़प रहे हैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को गले से लगाने के लिए, आओ हमारे पास, दूर मत रहो अपने बाऊजी से। ये सुनकर अनिकेत जी भावुक हो उठे, बाकी सब भी। वो दिनकर जी को बाऊजी कहते उनकी तरफ कदम बढ़ाने को हुए, पर उनके कदम उठ ही नहीं पाए। तभी सोनाक्षी जी उनका हाथ पकड़ते बोली, बाऊजी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, चलो, तुम भी तो कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे, मिलना था ना तुम्हें भी बाऊजी से, चलो मिलो जल्दी से। कहते वो अनिकेत जी को दिनकर जी के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। दोनों बाप बेटे को आज एक दूसरे के सामने देखकर उनकी भी आंखें छलक उठी, पर उन आंखों में एक सुकून भी नजर आ रहा था, मानो उन आंखों की जो देखने की चाह थी वो मुकम्मल हुई। अनिकेत जी ने पास आते ही आंसू भरी निगाहों से दिनकर जी को देखा, मुस्कुराते बाऊजी कहा और उनके पैर छूने को झुकने लगे कि दिनकर जी उन्हें रोककर उसी पल कसकर अपने गले से लगा लिया। वो भी उनसे लिपट गए, लिपटे ही नहीं बिलक पड़े, गले लगे लगे माफी, शिकायतें, नाराजगी, गुस्सा, गिले शिकवे, प्यार, परवाह, अपनापन सब जाहिर हो गया, एक पिता का बेटे के प्रति और बेटे का पिता के प्रति। अब जो नजर आ रहा था वो था उनका रिश्ता और उस पर उनका हक। दिनकर जी ने अनिकेत जी को चूमा, ठीक वैसे जैसे अपने छोटे बच्चे के बिछड़ने के बाद उसके मिलने पर माता पिता अपने बच्चे को खुशी के मारे चूमने लगते हैं, प्यार दुलार करने लगते हैं। अनिकेत जी रो रहे थे और अपने पिता को वो छोड़ भी नहीं रहे थे, मानो डरे हुए हों, छोड़ा तो उन्हें वो दूर हो जाएंगे उनसे। वो अपने पिता के गले से लगे हुए थे और दिनकर जी उन्हें प्यार से पुचकार रहे थे। पिता बेटे का मिलन देखकर सबकी आंखें भी बरसी और होठों पर मुस्कुराहटें भी पहरा जमाकर बैठ गईं। सोनाक्षी जी और शांति जी ने आंखें मूंद गहरी सांस भरी, पर तभी दोनों को अयांश का ख्याल आया। एक पिता बेटे का तो मिलन हो चुका था जो प्रेम भरा और खूबसूरत था, पर अभी एक और पिता बेटे का मिलन बाकी था, अनिकेत जी और अयांश का। दिनकर जी ने तो बड़प्पन समझदारी खूब दिखाई, बेटे के आते ही उसे स्वीकार कर बीता सब भुला डाला और अनिकेत जी को सीने से लगा लिया।
अयांश भी समझदार था, इसमें कोई दो राय न थी। आज उसने सच को भी स्वीकार कर लिया था कि अनिकेत जी सोनाक्षी जी की कोई गलती नहीं है, पर इतने सालों बाद अनिकेत जी को कैसे स्वीकार करेगा अयांश, उनके साथ अयांश कैसा बर्ताव करेगा, इस बात पर सब अनजान थे। पर इतना तो सभी जानते थे, अयांश दिनकर जी जैसा नहीं है, अलग है। भाव प्रकट करने में भी कच्चा है वो, और जिद्दी और थोड़ा गुस्से वाला भी। शांति जी सोनाक्षी जी ने एक दूसरे की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, क्योंकि अयांश अभी ऊपर ही था, नीचे नहीं आया था, जबकि आरवी के माध्यम से अनिकेत जी के मेहरा सदन में आने की खबर पहुंच चुकी थी। अयांश आरवी का रूम, आरवी अयांश का हाथ पकड़ते, मिस्टर मेहरा वो नीचे आ चुके हैं, चलिए, आप नीचे क्यों नहीं चल रहे, हमें मिलना है ना उनसे, आपके डैड आ गए हैं, आप कब से वेट कर रहे थे उनका, वेट खत्म हुआ, डैड आ गए हैं, चलिए ना कमरे से बाहर निकलिए, सब लोग मिल रहे हैं उनसे, चलिए हम भी मिलते हैं जाकर उनसे, बहुत खुश होंगे वो, आपको देखेंगे आपसे मिलेंगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और मैं ये भी तो जानती हूँ आप भी बहुत खुश होंगे अपने डैड से मिलकर उनको देखकर, आपने तो फोटो भी नहीं देखी, मैं दिखा रही थी तब भी नहीं, फोटो नहीं देखी तो नहीं देखी, पर अब तो चलकर देख लीजिए उन्हें, वो आज आपके सामने होंगे, चलिए। बोलते बोलते आरवी उसे खींचकर दरवाजे तक लाई, पर तभी अयांश ने अपना हाथ छुड़ा लिया और जोर से बोला, नहीं। ये देखकर आरवी हैरान हो गई, अयांश ऐसे नहीं क्यों बोल रहा है और कमरे से बाहर क्यों नहीं जा रहा है। आरवी को समझ ना आया तो वो अयांश से फिर बोली, क्या हुआ, आप मेरे साथ चल क्यों नहीं रहे हैं। अयांश कुछ नहीं बोला, उसने आरवी की ओर उसी पल पीट कर ली, और ये देखकर आरवी की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर पकड़ लिया। मिस्टर मेहरा, डोंट डू दिस,